आप सुनना शुरू कर चुके हैं खबरों से भरा न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। स्वीकार करें अनुराग अन्वेषी का नमस्कार। दोस्तों, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। आज के दिन देश के मौसम का हाल कैसा है यह बताएंगे आपको आज के पॉडकास्ट में। यूपी चुनाव को लेकर जो गहमा गहमी है उससे भी रूबरू कराएंगे आपको। गुवाहाटी बीकानेर रेल हादसे का ताज़ा अपडेट भी लेकर आए हैं हम। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर भी चर्चा होगी आज के पॉडकास्ट में। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अस्पताल में मिली भ्रूण खोपड़ियों का राज क्या है यह भी बताएंगे आपको। साथ ही गुड़गांव में एनएसजी के नाम पर की गई ठगी की जानकारी भी देंगे। लेकिन इन सब से पहले दिल्ली हाईकोर्ट की वह खबर जिस पर आज भी सुनवाई होनी है। वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक श्रेणी में रखने की मांग कर रही याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। मंगलवार को कोर्ट ने कहा था कि कैसे एक शादीशुदा महिला को संभोग से इनकार करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, जबकि बगैर सहमति के संबंध बनाने पर अन्य को बलात्कार का मामला दर्ज कराने का हक है। जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस हरिशंकर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। न्यायाधीश शकधर ने कहा कि सेक्स वर्कर को भी अपने ग्राहक को न कहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जब एक पति की बात आती है तो एक महिला जो पत्नी भी है उसे इस अधिकार से कैसे दूर रखा जा सकता है। एक याचिकाकर्ता के लिए कोर्ट में पेश हुई एडवोकेट करुणा नंदी ने कहा कि शादी के मामले में संभोग की अपेक्षाएं होती हैं। इस तरह सेक्स वर्कर के मामले में भी यही हाल है। हालांकि न्यायाधीश हरिशंकर ने कहा कि दोनों चीज़ों को एक समान नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि महिला ने भुगता है, लेकिन हमें उस व्यक्ति के परिणामों को ध्यान में रखना होगा जो 10 साल की सज़ा के लिए उत्तरदायी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि धारा 375 प्रावधान यह नहीं कहता कि रेप पर सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या इसे बलात्कार की तरह सजा दी जानी चाहिए। बेंच ने मंगलवार को कहा था कि वे इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक जारी रखेंगे। अगर सरकार अपवाद को खत्म करने का फैसला करती है तो यह जज को फैसला लिखने की परेशानी से बचाएगा। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि वह इस मामले में सकारात्मक कदम उठाने की प्रक्रिया में है। दिल्ली NCR में मकर संक्रांति की सुबह लोगों के लिए परेशानी बनकर आई है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम रही। इस दौरान पूरे NCR में ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। दिल्ली में शुक्रवार सुबह 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और धूप न निकलने के कारण गलन का एहसास हो रहा। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी यही हाल देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली NCR में तेज ठंड के साथ ही घना कोहरा रह सकता है। दिल्ली से सटे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी तेज ठंड के साथ कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की आशंका भी जताई है। इससे ठंड और बढ़ सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि विदर्भ और छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। विभाग ने ठंड को लेकर बताया है कि इस सप्ताह के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं होंगे। हालांकि गुजरात को 2 दिनों में ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 14 जनवरी को ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की या मध्य वर्षा की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर 14 और 15 जनवरी को बारिश के आसार हैं। गुवाहाटी बीकानेर रेल हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 8 हो गई है। वहीं 42 घायलों का इलाज जारी है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में मायानगरी के पास शाम 5 बजे ट्रेन के 12 कोच पटरी से उतर गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेल हादसे में फंसे कम से कम 50 लोगों को बचाया गया है। रेल बोगियों में फंसे लोगों को सही सलामत बाहर निकालने के लिए NDRF की 2 टीमें जुटी हुई हैं। भारतीय रेलवे ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। 42 में से 7 घायलों का इलाज NBMCH और अन्य 7 का मायानगरी RH में चल रहा है, जबकि 28 लोग जलपाईगुड़ी SSH में भर्ती हैं। कोरोना संक्रमण से दिल्ली के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जबकि मुंबई में थोड़ी राहत है। यहां संक्रमण में 15% की गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,64,202 केस सामने आए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 28,867 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 13,702 रहा। दिल्ली में बीते 24 घंटे में संक्रमण के कारण 31 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान गुजरात में 11,176 नए मामले सामने आए और 5 रोगियों की मौत हुई। बिहार में 6,393 नए मामले सामने आए, जबकि 7 और मरीजों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 4,500 केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के हालात से निपटने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 नए PSA ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के प्रयास जारी हैं। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इसके तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों के लिए नामांकन किया जाएगा। चुनावी उठापटक के बीच अब तक 15 विधायकों के बीजेपी छोड़ने की सूचना है। बीजेपी छोड़ने वाले विधायक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, भगवती सागर, रोशन लाल वर्मा, विनय शाक्य, अवतार सिंह भडाना, दारा सिंह चौहान, ब्रिजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, राकेश राठौर, जय चौबे, माधुरी वर्मा, आर के शर्मा, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी और चौधरी अमर सिंह। गुरुवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। उनके संग भाजपा छोड़ चुके अन्य विधायक भी थे। आज शुक्रवार को कुछ और विधायक व मंत्री भाजपा छोड़ने की तैयारी में हैं और ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में हैं। इस बाबत सपा प्रमुख अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य सुबह 11 बजे लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ बैठकों के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर ली है, लेकिन जारी नहीं की। सूत्र बताते हैं कि लिस्ट पूरी तरह से बन गई है और इसमें कई मौजूदा विधायकों का पत्ता कट गया है। सूत्रों की माने तो पहले 2 चरणों में ही दर्जन भर विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। हालांकि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और मुजफ्फरनगर जिलों के सभी सिटिंग विधायकों को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। बीजेपी के पहले 2 चरणों की संभावित लिस्ट देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी NSG के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। NSG में कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर की गई इस ठगी के मामले में SIT ने मास्टरमाइंड प्रवीण यादव, उसकी बीवी ममता यादव और उसकी बहन रितु यादव व एक अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड प्रवीण यादव ने खुद को डिप्टी कमांडेंट बता पत्नी, जीजा और बहन के साथ मिलकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि NSG कैंपस में 16 किलोमीटर लंबी पेरिफेरल रोड, STP बनाने और सेंट्रल वेयर हाउस के कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर 100 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की गई है। गुरुग्राम पुलिस ने करोड़ों की ठगी के मामले में प्रवीण यादव, उसकी पत्नी, एक्सिस बैंक की मैनेजर और प्रवीण की बहन रितु यादव और उसके पति नवीन यादव के साथ ही एक्सिस बैंक के खिलाफ मानेसर थाने में 3 अलग अलग FIR दर्ज हुई हैं। महाराष्ट्र के वर्धा जिले की तहसील RV के एक अस्पताल के गोबर गैस टैंक में 11 भ्रूण खोपड़ी और 56 अन्य अंग मिलने से सनसनी फैल गई है। इस मामले में पुलिस ने अस्पताल की डॉक्टर रेखा कदम सहित कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। वर्धा के पुलिस अधीक्षक प्रशांत होलकर ने कहा कि इस अस्पताल की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। यह मामला गंभीर है, इसलिए छानबीन कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि RV के कदम अस्पताल के बारे में शिकायत मिली थी। एक महिला ने शिकायत में बताया था कि इस अस्पताल में उसकी 13 साल की रेप पीड़िता बच्ची का जबरन गर्भपात कराया गया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दें विदा। नमस्कार दोस्तों।